ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ
ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ।
ਪੁੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਤਾਪ ਅਸ਼ਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਯੋਗ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਆ ਥਾ। ਅਨੁਤਾਪ ਅਸ਼ਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਨੋਂ ਕੇ ਤੀਨੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਕਤਜਨੋ ਭਕਤੀ ਕੇ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਇਨ ਤੀਨੋਂ ਮੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੈ। ਵਿਯੋਗ ਮੇਂ ਭੀ, ਅਨੁਤਾਪ ਅਸ਼ਰੂ ਮੇਂ ਭੀ ਏਵਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਭੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਭੀਤਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਮੇਂ ਭੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਂ ਭੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਮੇਂ ਭੀ ਹੈ। ਅਤੈਵ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਗੁਣ ਇਨ ਸਭ ਮੇਂ ਭੀ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਮੇਂ ਭੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਂ ਭੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਛੀਓਂ ਮੇਂ ਭੀ ਹੈ। ਕਭੀ ਪੰਛੀਓਂ ਕੋ ਦਾਨਾ ਚੁਣਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਦਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕੇ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੰਛੀ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੇਂ ਡਾਲਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਓਂ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਆਂਸੂ ਪ੍ਰਾਇਆ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਨ ਸਭ ਮੇਂ ਭੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਨਵ ਮੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਕੋ ਔਰ ਆਗੇ। ਇੱਕ ਗਡਰੀਆ, ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਸੀ ਭੇੜੀ ਥੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਥੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਜੰਗਲ ਸੇ ਚਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਾਉਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਥੀ ਉਨਕੋ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਉਨਮੇ ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਥਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਭੇੜ ਕਾ, ਵੇ ਥੋੜਾ ਲੰਗੜਾਤਾ ਵੀ ਥਾ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਛੋਟਾ ਥਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭੀ ਭੇੜੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਬੱਕਰੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ उसी चाल से उसी गति से नहीं चल पाता था। एक डरिया उसे कभी कभी मारता, कभी उसे धक्का देता, वह बेचारा गिर जाता। इसके बावजूद भी वह तेज तो न चल पाता, मानो उनके साथ चलना उसके लिए मुश्किल। कहते हैं महात्मा बुद्ध कहीं उतरी थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उन्होंने गडरिये से अनुमति मांगी, ये बेचारा कमजोर है, ये चल नहीं पा रहा, बच्चा भी है, तो मैं इसे अपनी गोद में उठा लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं। इतनी सी बात कहे कि महात्मा बुद्ध ने उस मेमने को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। एक दफा तो मेमने की दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई, न जाने ये क्रूर क्या करने जा रहा है। पहला क्रूर तो मुझे मारता था, तेज चलने के लिए मेरे अंदर समर्थ न होते हुए भी, इस बात को जानते हुए भी वह मुझे बड़ी क्रूरता से पीटता था। ये क्रूर पता नहीं क्या करने जा रहा है। एक दफा तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई। जब महात्मा बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया, सिर पर हाथ फेरना शुरू किया, उसके मुख पर हाथ फेरना शुरू किया, तो चेतना लौट, तो ये मेमना ठीक हो गया, मानो अब निर्भय है, अब किसी प्रकार का इसके अंदर भय नहीं है। चेक करने के लिए मेमने ने भी अपनी जिह्वा को निकाल के तो महात्मा बुद्ध के हाथ को या मुख की ओर करना शुरू किया कि तुम प्यार कर रहे हो तो मैं भी तेरे से प्यार करना चाहता हूँ, रेसिप्रोकेशन, मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करना चाहता हूँ, मानो दूसरे एक दूसरे के प्रेमी हो गए। सारा रास्ता महात्मा बुद्ध उससे प्रेम करते आए, ठीक इसी प्रकार से कभी पीठ पर हाथ फेरते, कभी सिर पर हाथ फेरते, मानो उसके अंदर प्रेम इन्वोक कर रहे हो। तो उधर भी किसी प्रकार की कमी नहीं, साधक सुनो, प्रेम में जहाँ द्वेष, घृणा में, अभिमान में ये दुर्गुण है, आप किसी के सामने अभिमानी वाणी बोल के तो उसके अंदर का अभिमान जागृत करते हो, उसके अंदर अभिमान जागता है। तो इधर यदि आप प्रेम करते हो तो दूसरे के अंदर प्रेम जागृत होता है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा जरूर, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं, बिल्कुल कोई संशय किसी प्रकार का नहीं। करते करते जहाँ पहुँचना था वे सारी की सारी भीड़ बकरियाँ वहाँ पहुँच गई हैं। तो उसके डरिए ने महात्मा बुद्ध से उस मेमने को लेने की कोशिश की। महात्मा बुद्ध ने मेमने से कहा, जाओ भाई, आपका घर आ गया है, मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। मानो पीठ पर एक बार फिर हाथ फेरा, मेमना घर जाने को तैयार नहीं, मुड़ मुड़ के तो महात्मा बुद्ध की तरफ देख रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, मानो ये कह रहा हो या तो मुझे साथ ले चलो या इधर मेरे साथ आओ। ये प्रीति है, ये प्रेम है। गडरिया ये सब कुछ देख के तो बहुत चकित हो रहा है। महात्मा बुद्ध से कहा, जैसा ये आपके साथ कर रहा है, कभी इसने मेरे साथ क्यों नहीं किया? महात्मा बुद्ध ने झट कहा, जैसे मैंने इसके साथ किया, तूने भी तो कभी नहीं किया, तो फिर कैसी अपेक्षा रखते हो कि वह तेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करे? तो प्रेम भक्तों, पंछियों भी है, पशुओं भी है, एवं मानव में भी है। बेशक वे बेचारे इस प्रेम को परमात्मा के प्रति प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ मानव है, जो इस प्रेम को परमात्मा के प्रति प्रयोग करके है, तो परमात्मा की कृपा का और परमात्मा के प्रेम का पात्र बन सकता है। देखो, पशु में ये जागृत हुआ तो परमात्मा में वह क्यों जागृत नहीं होगा? परमात्मा आपके प्रेम से क्यों प्रभावित नहीं होगा? क्यों आपको प्रेम के बदले प्रेम नहीं देगा, भरपूर देगा? वह तो प्रेम का सागर है, तो प्रेम सिंधु है। आश्चर्य है साधकजनों, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है। उसका स्वरूप प्रेम, मानो प्रेम की छोटी मोटी मात्रा में तो हमारे अंदर नहीं होगा, इसके बावजूद भी हम कैसे हैं? ये कहां से हमारे अंदर वैर, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अभिमान इत्यादि आ जाते हैं? ये कहां से स्वार्थ आ जाता है? प्रेम अर्थात निस्वार्थता, वहां कोई स्वार्थ का कोई ठिकाना ही नहीं, कोई कोई स्कोप ही नहीं है। ये कहां से सब कुछ आ जाता है? तनिक चिंतन मनन का विषय सोचना चाहिए हमें। हमारे अंदर प्रेम स्वरूप परमात्मा विराजमान है, लेकिन साथ ही साथ ये स्वार्थ भी है, अभिमान भी है, ईर्ष्या द्वेष भी है, घृणा भी है, इत्यादि इत्यादि। ये कहां से अटपके हैं? संत महात्मा इस बात का एक ही सुंदर उत्तर देते हैं। बंधुओ, सच ये है कि आपने अभी तक अपने अंदर प्रेम को प्रकट ही नहीं किया। प्रेम प्रकट किया हुआ होता तो ये चीजें वहां टिक ना सकती। ये जो आप राम राम जपते हो, जो हम साधना करते हैं, सिर्फ इसी के लिए कि हमारे अंदर वह प्रेम प्रकट हो, हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो, हमारे अंदर परमात्मा के गुण प्रकट हो, तो फिर हम अंदर से मालामाल हैं। परमात्मा के गुण, परमात्मा का स्वभाव, प्रेम स्वरूप, कृपा स्वरूप, क्षमा स्वरूप इत्यादि इत्यादि, ये सब उसके गुण हैं। यदि वह प्रकट हो जाता है तो वह सारे के सारे गुण व्यक्ति के अंतस्थ में भर जाते हैं, परिपूरित हो जाते हैं, अन्यथा कुछ नहीं। अन्यथा आराम से परमात्मा बैठे हुए हैं, जब तक आप उन्हें प्रकट नहीं कर लोगे। तो प्रकट करने के लिए आप सब साधनारत हैं, हम सब साधना करते हैं, ताकि परमात्मा भीतर विराजमान जो है वह हमारे अंदर प्रकट हो और हम उनके गुणों का लाभ ले सकें। एक और उदाहरण देखिए, सुमंत जब प्रभु राम लक्ष्मण मां सीता को छोड़ के लौटा है, घोड़े वापस लौटने को तैयार नहीं, मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, हिनहिना रहे हैं, मानो सुमंत से कह रहे हों हमें यहीं छोड़ जाओ, हम अकेले बिना राम के लौटने के आदि नहीं हैं, हम सदा उनके साथ रहे हैं, हमें सदा उनका प्रेम दुलार मिलता रहा है, आज उनके प्यार से दुलार से हमें वंचित ना करो, हमें यहीं रहने दो, हम उनके साथ ही चले जाएंगे, हमें वे कुछ नहीं कहेंगे। आदमी को तो रोक सकते हैं लेकिन हमें नहीं रोकेंगे, हम राम के उदार विशाल विराट हृदय को जानते हैं, उनके अंदर की भावनाएं इस प्रकार की। लेकिन सुमंत को तो वापस लौटना था, अतएव वापस आ गए। काफी समय बाद की बात है, मां कौशल्या जननी प्रभु राम की व्यथ थी, उनकी व्यथा का डिब्यू सज्जनों हम अनुमान नहीं लगा सकते। वे वही अनुमान लगा सकता है जो थोड़े समय के लिए अपने आप को कौशल्या बनाए, उसी को पता लग सकेगा कि मां कौशल्या की वेदना किस प्रकार की है। कैकेयी की क्या है कोई नहीं जानता, सुमित्रा की क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन मां कौशल्या की व्यथा पीड़ा वेदना को हर मां को जानना चाहिए। आपने भी तो राम जन्मे हैं, आपने भी तो पुत्र जन्मे हुए हैं जैसे उसने जन्मा था, तो आपको पुत्र वियोग की पीड़ा वेदना पता होनी चाहिए, कहीं ज्यादा कौशल्या के अंदर वेदना है। बहुत पीड़ित है कुशल्या, बुढ़ापा भी है और महाराजा भी, महाराज दशरथ भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। बिल्कुल भी सहारा अपने आप को महसूस करने वाले ये कुशल्या, आज एक कोई पथिक दिखाई दिया जो चित्रकूट की तरफ जा रहा है। महारानी को पता लगा कोई चित्रकूट जाने वाला यात्री है, पथिक है, इशारा करके उसे बुलाया। चित्रकूट जा रहे हो? हाँ मैया। एक संदेश देना राम को, जाके कहना एक दफा अयोध्या लौटाऊं। ठीक है भैया, जाके कह दूंगा, मां कुशल्या बहुत याद कर रही है। नहीं नहीं मेरा नाम ना लेना, मुझे बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। काश मैं सच्ची प्रेमी होती राम की, तो राजा दशरथ की तरह मैं भी मर गई होती। मेरे अंदर राम के प्रति वात्सल्य जैसा होना चाहिए वैसे नहीं, अतएव मेरी तरफ से कुछ न कहना। फिर किसके लिए कहूं, किसने बुलाया है? कहना तेरे घोड़े तुम्हें बहुत याद करते हैं, एक दफा मेरे लिए नहीं उन घोड़ों के लिए आ जाओ, एक दफा उन घोड़ों को आके देख जाओ, उनके दिल पर क्या बीत रही है तेरी अनुपस्थिति में, उसके बाद यदि तू वापस लौटने की हिम्मत कर सके तो लौट जाना। मानो मां कुशल्या जो स्वयं पीड़ित है, वह किसी दूसरे की पीड़ा को भी समझ सकती है, वह उन घोड़ों की पीड़ा को भी समझती है, उन घोड़ों की वेदना को भी समझती है। कभी जाती हूं, दो विरह से पीड़ित, वियोग में पीड़ित, दो मिलके तो आपस में बड़ा ढारस बनता है, हौसला बनता है। कभी कभी मां कुशल्या उनको देखने चली जाती होंगी, जैसे मैं राम के बिना तड़प रही हूं, ऐसे ही ये घोड़े भी राम के बिना तड़प रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख के तो कितने निहाल होते होंगे, कितने प्रसन्न होते होंगे, कितना एक दूसरे का हौसला बनता होगा। ठीक है मैया, जाके कह दूंगा तेरे घोड़े तुम्हें बहुत याद करते हैं। पथिक, समय हो गया है देवी और सत्र, कल चर्चा करने की इसकी आगे जारी रखेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।